आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल होने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। ये एक वैश्विक मंच है जो दुनिया भर में सहयोग और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसमें भारत की भागीदारी से निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने और ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलेगी। ये कदम हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के अनुरूप है और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस निर्णय से भारत को रणनीतिक ऊर्जा के तरीकों और नए समाधानों को साझा करने वाले विशिष्ट 16 देशों के समूह तक पहुंच हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों और अत्याधुनिक तरीकों को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भी योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। शास्त्रीय भाषाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए कल एक चरण में मतदान होगा। चुनाव मैदान में 1031 उम्मीदवार हैं, जिनमें 930 पुरुष और 101 महिलाएं शामिल हैं। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि इन उम्मीदवारों में 464 निर्दलीय हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रदेश में 2,03,54,000 से अधिक मतदाता हैं। चुनाव के सुचारू संचालन के लिए कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिहार में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिलों सुपौल, सीतामढ़ी और दरभंगा में जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। राज्य के 17 जिलों में 15 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार में कई जिलों में बाढ़ के पानी के घटने के साथ कई इलाकों में सरकारी विभागों ने नुकसान को लेकर आकलन शुरू कर दिया है। नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 236 हो गई है। इस बीच क्षतिग्रस्त राजमार्गों की मरम्मत करने में बहुत कठिनाई आ रही है। इन हादसों में कम से कम 19 लोग लापता और 173 अन्य घायल हो गए हैं। भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय ने कहा कि 27 और 28 सितंबर को लगातार मानसूनी बारिश के कारण हुई आपदाओं में अवरुद्ध 34 राजमार्गों में से 5 को अभी भी साफ किया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पत्रकार वार्ता में कहा था कि 4,000 से अधिक पीड़ितों को बचाया गया है और खोज एवं बचाव प्रयास कल तक जारी रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि जब हिमालयी राष्ट्र पिछले हफ्ते भारी बाढ़ और भूस्खलन से तबाह हो गया था, जिसमें 236 से अधिक लोगों की जानें चली गई थीं, नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने काठमांडू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एकजुटता व्यक्त करते हुए अपने नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली को पत्र लिखा। भारत ने कल ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच डिएगो गार्सिया सहित चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता की वापसी पर समझौते का स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि यह संधि मॉरिशस के औपनिवेशीकरण को पूरा करती है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम आज शाम दुबई में सोफी डिवाइन की न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस बीच दोपहर को होने वाले मैच में वेस्टइंडीज का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर मैच की ऑफ ट्यूब लाइव कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। इसके साथ ही समाचार